वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर।
रेडियो वेरितास एशिया सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज के इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम संत सानिध्य और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं पवित्र बाइबल के पाठ से। तो आइए सुनते हैं आज का पहला पाठ जो लिया गया है दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 2 से 14 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को ज्वलित कर रही थीं, और उसमें से चार विशाल काय पशु निकलते थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था किंतु उसके गरुड़ के जैसे पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए, उसे उठाकर दो पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वो आधा ही खड़ा था और वो अपने मुंह में दांतों के बीच तीन पसलियां लिए था। उसे ये आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के चार डैने थे और उसके चार सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वो विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वो चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वो पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मलून की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वो वयोवृद्ध के यहां पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वो सदा ही बना रहेगा, उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ जो लिया गया था दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 2 से 14 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस। आदि अनादि तू जीवन ज्योति तू, आदि अनादि तू जीवन ज्योति तू, तेरी ज्योत चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस। सकल कला तू, तू ही कलाकार, सकल कला तू, तू ही कलाकार, तेरा साया चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस। जग की बहार तू, स्नेह फुहार तू, जग की बहार तू, स्नेह फुहार तू, तेरा प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए।
दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों अब सुनते हैं पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संख्या 29 से 33 तक और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
ईसा ने उन्हें ये दृष्टांत सुनाया।
अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते।
तो अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संख्या 29 से 33 तक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों अब सुनते भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
प्यार को।
दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेतास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVA हिंदी। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है RVA हिंदी। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहे और सुनते रहे सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संत सानिध्य, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
श्रोता साथियों, संत सानिधि के तहत आइए सुनते हैं संत निकोलस की जीवनी। क्रिसमस का त्योहार हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार प्रेम व मानवता का संदेश तो देता ही है, साथ ही यह भी बतलाता है कि खुशियां बांटना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। सांता क्लोज द्वारा बच्चों को गिफ्ट्स बांटना इसी बात का प्रतीक है। जब जब सांता क्लोज की बात चलती है तो मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो दानशील है, दयालु है और सबके चेहरे पर खुशियां बिखेरने के लिए खास तौर पर नॉर्थ पोल से चलकर आता है। सांता क्लोज केवल एक धर्म विशेष के नहीं बल्कि पूरी मानवता के जीवंत प्रतीक है। सांता क्लोज लाल व सफेद ड्रेस पहने हुए एक वृद्ध मोटा पौराणिक चरित्र है जो रेंडियर पर सवार होता है। बच्चों के प्यारे सांता क्लोज, जिन्हें संत निकोलस और क्रिसमस पिता भी कहा जाता है, जो केवल क्रिसमस वाले दिन ही आते हैं। ऐसी मान्यता है कि साल भर सांता क्लोज और मिसेस क्लोज बच्चों के लिए खिलौने, कुकी, केक, पाई, बिस्किट, कैंडी तैयार करवाते हैं। इसके बाद सांता क्लोज गिफ्ट्स को एक बड़ी सी झोली में भरकर वो क्रिसमस के पहले की रात यानी 24 दिसंबर को अपने 8 उड़ने वाले रेंडियर वाले स्लेज पर बैठकर किसी बर्फीली जगह से आते हैं और चिमनियों के रास्ते घरों में प्रवेश करके सभी अच्छे बच्चों के लिए उनके सिरहाने उपहार छोड़ जाते हैं। सांता क्लोज शब्द की उत्पत्ति डच सिंटर से हुई थी। सांता क्लोज की प्रथा संत निकोलस ने 4वीं या 5वीं सदी में शुरू की। माना जाता है कि सांता का घर उत्तरी ध्रुव में है और वे उड़ने वाले रेंडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। सांता का यह आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया, उसके पहले ये ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता और सांता का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और ईसा के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है, फिर भी आज के समय में सांता क्लोज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में ईसा की मौत के 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से ही उनकी प्रभु येसु में बहुत आस्था थी। मठ में पला बड़ा निकोलस 17 वर्ष की आयु में पुरोहित बन गए। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पुरोहित यानी पुजारी और बाद में एशिया माइनर के बिशप बने। निकोलस बहुत ही दयालु और परोपकारी थे। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका उद्देश्य था कि क्रिसमस और नव वर्ष के दिन गरीब अमीर सभी प्रसन्न रहें। उन्हें बच्चों और नाविकों से बेहद प्यार था। उन्हें गरीब और बेसहारा बच्चों को गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स देते थे। संत निकोलस को बच्चों से खास लगाव था। वे उन्हें बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से बच्चों को हमेशा उपहार दिया करते थे। यह बुजुर्ग ईसा का एक समर्पित अनुयायी था। वह ईसा जयंती के दिन किसी भी व्यक्ति को धन की कमी के कारण त्योहार मनाने से वंचित नहीं देखना चाहता था। इस कारण वह लाल रंग के विशेष वेशभूषा में गरीबों के घर जाकर खान पान की सामग्री एवं बच्चों के लिए खिलौने बांटा करता था। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। निकोलस धनी नहीं था, अतः उसके इस त्याग को देखकर लोग उसे संत निकोलस नाम से संबोधित करते थे। उसकी मृत्यु के बाद इस तरह की वेशभूषा में लोगों को जरूरी सामग्री बांटना कई लोगों की आदत बन गई। ये सब संत निकोलस कहलाए जाते थे। कालांतर में संत निकोलस नाम बदलकर सांता क्लॉस हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो सांता क्लॉस उसी बात को प्रदर्शित करता है जो ईसा का संदेश था, कि हर किसी को अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। सांता क्लॉस का आज का जो प्रचलित नाम है वह निकोलस के डच नाम सिंटरक्लास से आया है, जो बाद में सांता क्लॉस बन गया। ईसा और उनकी माँ मरियम के बाद संत निकोलस को ही इतना सम्मान मिला। सन 1200 से फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन संत निकोलस की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद लोगों ने उन्हें संत का दर्जा दिया। कैथोलिक चर्च ने क्रिसमस का उत्सव मनाने के दौरान संत निकोलस को सीजन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। मध्य युग में संत निकोलस का जन्म दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता था। अब यह मान्यता है कि वह क्रिसमस की रात को आते हैं और बच्चों को तरह तरह के उपहार वितरित करते हैं, जिससे क्रिसमस का हर्षोल्लास बना रहे। इस तरह क्रिसमस व बच्चों के साथ संत निकोलस के रिश्ते जुड़ गए। यही बच्चों के सांता क्लॉस बन गए और वहाँ से यह नाम संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गया। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सांता अपनी पत्नी और बहुत सारे बौनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। वहाँ एक खिलौने की फैक्ट्री है जहाँ सारे खिलौने बनाए जाते हैं। सांता के ये बौने साल भर इस फैक्ट्री में क्रिसमस के खिलौने बनाने के लिए काम करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि विश्व भर के बच्चे अपने खत सांता क्लॉस को भेजते हैं और वे प्रत्येक खत का जवाब भी देते हैं। तो आइए श्रोता साथियों, अब सुनते हैं सांता क्लॉस द्वारा लिखा गया एक काल्पनिक खत। मेरे प्रिय साथियों, हर साल मुझे आपके सुख दुख के 60 लाख से ज्यादा पत्र मिलते हैं। इन पत्रों में खुशबू होती है आपके मीठे प्यार की। कभी आंसू की बरखा होती है, कभी तकलीफों का पिटारा, कभी चहकती खुशियां, तो कभी गमगीन दुनिया। हर पत्र के साथ मैं रोता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कभी कभी घंटों बैठकर सोचता हूँ। सोचता हूँ आखिर यह मानव इस दुनिया में चाहता क्या है। छोटी छोटी मासूम खुशियाँ, सच्चा प्यार, अपनों की प्रगति, बड़ों का आशीर्वाद और भरपूर शांति। फिर क्यों आपकी इसी दुनिया में चारों तरफ नफरतों की जंग छिड़ी हुई है? क्यों हर साल बिना किसी गुनाह के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं? आप सबके पत्र मुझसे मांगते हैं, अपने लिए जिंदगी भर की दुआएं, और आज मैं आपसे मांगता हूँ पल भर का सुकून। आप सब चाहते हैं आपकी जिंदगी में रौनक रहे, रोशनी रहे, और मैं इस क्रिसमस पर आपसे चाहता हूँ इस धरती पर शांति का श्वेत उजाला बना रहे। मैं आपको इस क्रिसमस पर देना चाहता हूँ शांति के सफेद कबूतर, लेकिन देखता हूँ आपके हाथों में उन्हीं का लाल खून, तब तड़प उठती है मेरी आत्मा। इस बार जब आप क्रिसमस ट्री को सजाओ तो मत भूलना अपने देश के उन नन्हे नोनिहालों को जिनके तन पर जरूरत के कपड़े भी नहीं सजे हैं। जब बनाओ क्रिसमस ड्राई फ्रूट्स केक तो मत भूलना भूख से बेहाल उन बच्चों को जिन्हें सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। और जब क्रिसमस पार्टी में सांता क्लोज यानी मेरा रूप धारण कर झूमो तो मत भूलना कि खुशियों का पैगाम लाने वाला आपका अपना सांता खुश नहीं है, गंदगी में जीवन बिताने वाले हजारों बाल श्रमिकों का रूप देखकर। मैं आपका अपना सांता क्लोज आज पत्र लिख रहा हूँ उन सारे जिम्मेदार लोगों के नाम जो मुझसे अब तक सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही उपहार मांगते रहे हैं। आज मैं उनसे उपहार चाहता हूँ। चाहता हूँ कि देखे अपने आसपास के गरीब, बेबस, शारीरिक रूप से अक्षम, अनाथ, मजदूर और मजबूर इंसानों को, और मनाइए क्रिसमस का पावन पर उनको एक पल की खुशी का उपहार देकर। यहाँ तक कि दुनिया के सारे हथियार समुद्र में बहा दिए जाए और सीमा पर तैनात सारे जवान घर लौट आए। इतने और ऐसे ऐसे भावुक अनुरोध कि अगर दिल की गहराई से समझे तो एहसास होगा कि मूल रूप से इंसान की कृति कितनी भोली और निश्चल होती है। ना जाने कब कैसे कौन सी विकृति उसे डस लेती है कि वह इंसान से हैवान बन जाता है। आप सच्चे मानव बने रहें और मानवता को बना रहने दे, यही मेरी इस क्रिसमस पर सच्ची शुभकामनाएं हैं।
दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम संत सानिध्य, जिसके अंतर्गत आपने सुनी संत निकोलस की जीवनी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।